नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डार्क एओन, जो एलन की गैर कथा पुस्तक है, जो ट्रांसह्यूमनिज्म को केवल चिकित्सा या उपभोक्ता तकनीक की प्रवृत्ति नहीं बल्कि मानव होने के अर्थ को बदलने वाली विचारधारा के रूप में जांचती है। पुस्तक का उपशीर्षक ट्रांसह्यूमनिज्म एंड द वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उसके स्पष्ट आलोचनात्मक रूप को बताता है। एलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, जीन संपादन, प्रजनन तकनीक और डिजिटल पहचान जैसी दिशाओं को एक साझा परियोजना के संकेतों के रूप में देखते हैं, जिसमें मानव शरीर निर्णय और चेतना मशीन प्रणालियों से अधिक निकटता से जुड़ते हैं। उनका तर्क है कि उपचार के लिए बनाई गई तकनीकें धीरे धीरे सामान्य मनुष्यों के संवर्धन और सामाजिक नियंत्रण की ओर बढ़ सकती है। विज्ञान और धर्मशास्त्र दोनों की पृष्ठभूमि से लिखते हुए एलन इस बदलाव के नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक पक्षों को जोड़ते हैं। यह पुस्तक तकनीकी प्रगति का तटस्थ इतिहास नहीं है, बल्कि उसके दावों, शक्ति संबंधों और संभावित मानवीय कीमत पर केंद्रित चेतावनीपूर्ण विश्लेषण है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ट्रांसह्यूमनिज्म को मानव और मशीन के क्रमिक विलय के रूप में देखना। एलन के अनुसार, ट्रांसह्यूमनिज्म का केंद्रीय विचार मानव सीमाओं को तकनीक से पार करना है। वे इसे किसी दूरस्थ विज्ञान कथा की घटना के बजाय पहले से चल रही प्रक्रिया मानते हैं। स्मार्टफोन, पहनने योग्य उपकरण, एल्गोरिथमिक सिफारिशें और स्वचालित निर्णय प्रणालियां मनुष्य की स्मृति, ध्यान और चुनावों को बाहरी डिजिटल ढांचे पर निर्भर बनाती है। पुस्तक का मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि हर तकनीक हानिकारक है या नहीं, प्रश्न यह है कि सुविधा के छोटे छोटे विकल्प कब ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिसमें मानवीय क्षमता, निजता और स्वायत्त निर्णय कमजोर पड़ने लगते हैं। एलन आगे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को इस क्रम का अधिक गहरा चरण मानते हैं, क्योंकि वहां तकनीक केवल हाथ में पकड़े उपकरण के रूप में नहीं रहती बल्कि तंत्रिका गतिविधि से जुड़ने लगती है। उनका विश्लेषण उपचार और संवर्धन के बीच अंतर पर जोर देता है। लकवे से पीड़ित व्यक्ति को संवाद में मदद देने वाला इंटरफेस एक चिकित्सकीय उपयोग हो सकता है, लेकिन उसी साधन को स्वस्थ लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य बनाना अलग सामाजिक प्रश्न खड़े करता है। पुस्तक चेताती है कि लाभकारी आरंभ अपने आप में भविष्य के व्यापक उपयोग की नैतिक अनुमति नहीं होता। दूसरा, चिकित्सकीय उपचार से मानव संवर्धन तक की सीमा पर नैतिक बहस। डार्क एओन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि एलन तकनीकी समर्थकों द्वारा दिए जाने वाले करुणा और उपचार के तर्कों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उनके विस्तार पर संदेह करते हैं। दृष्टि, गतिशीलता या संचार वापस दिलाने वाली तकनीकों का मानवीय मूल्य स्पष्ट है। फिर भी पुस्तक पूछती है कि जब कंपनियां और निवेशक उपचार को संवर्धन की दिशा में पहला कदम बताते हैं, तब सहमति, जोखिम और समानता के नियम कैसे तय होंगे। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, जीन संपादन और प्रजनन तकनीकें केवल स्वास्थ्य सेवा के उपकरण नहीं रहती, क्योंकि वे बुद्धि, व्यवहार, शरीर और अगली पीढ़ियों के चयन से जुड़ सकती है। एलन की चिंता यह है कि बाजार प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव लोगों को ऐसे बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिन्हें वे वास्तव में स्वतंत्र होकर नहीं चुन रहे। यदि नौकरी, शिक्षा या सार्वजनिक सेवाओं में संवर्धित व्यक्ति को प्राथमिकता मिले तो तकनीक न अपनाना व्यावहारिक नुकसान बन सकता है। यह तर्क किसी विशिष्ट नवाचार के परिणाम को निश्चित नहीं बताता बल्कि नियमन से पहले उभरने वाली शक्ति, असमानताओं पर ध्यान दिलाता है। पुस्तक इसीलिए चिकित्सा नवाचार को रोकने के बजाय उपचार, सुधार और मानव पुनर्रचना के बीच स्पष्ट सार्वजनिक सीमाएं मांगती है। तीसरा, एआई, एल्गोरिथमिक शासन और निर्णय लेने की मानवीय जवाबदेही। एलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ट्रांसह्यूमनिस्ट परिवर्तन की आधारभूत शक्ति के रूप में रखते हैं। उनका सरोकार केवल यह नहीं कि एआई रोजगारों या सूचना के क्षेत्र को बदलेगी, वे अधिक गहरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि जब शिक्षा, प्रशासन, रक्षा, स्वास्थ्य और निजी जीवन में निर्णय एल्गोरिथम से निर्देशित होंगे तो जवाबदेही किसकी होगी। किसी प्रणाली का तेज या सुविधाजनक होना यह सिद्ध नहीं करता कि उसके निर्णय न्यायपूर्ण, समझने योग्य या मानवीय संदर्भ के अनुकूल होंगे। पुस्तक में एआई पर निर्भरता को मानवीय निर्णय क्षमता के क्षरण से जोड़ा गया है। यदि व्यक्ति लगातार मशीन से लिखवाए, छंटनी करवाए, संबंधों का आकलन करवाए या सार्वजनिक नीति तय करवाए तो वह अपनी विवेकशीलता का अभ्यास कम कर सकता है। एलन इस प्रवृत्ति के पीछे तकनीकी कंपनियों, राज्य संस्थानों और संपन्न निवेशकों की भूमिका पर भी प्रश्न उठाते हैं। उनका तर्क किसी एक समन्वित षड्यंत्र का प्रमाण प्रस्तुत करने से अधिक उन प्रोत्साहनों को रेखांकित करता है जिनमें आंकड़े, निगरानी और केंद्रीकृत नियंत्रण मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। इस विषय की उपयोगिता इसी में है कि पाठक दक्षता के दावों के साथ पारदर्शिता, अपील का अधिकार, डेटा नियंत्रण और मानवीय निरीक्षण की मांग को भी जरूरी समझे। चौथा, प्रजनन, जीन संपादन और जैविक पहचान पर तकनीकी दबाव। पुस्तक मानव पहचान के प्रश्न को शरीर और प्रजनन से अलग नहीं करती। एलन जीन संपादन, कृत्रिम गर्भाशय और तकनीक आधारित पहचान के विचारों को उन क्षेत्रों के रूप में देखते हैं जहां मानव जीवन की शुरुआत, पारिवारिक संबंध और जैविक सीमाएं नए ढंग से परिभाषित हो सकती है। उनकी चिंता यह नहीं कि हर प्रजनन तकनीक अनिवार्य रूप से अमानवीय है, बल्कि उनका प्रश्न यह है कि जब प्रजनन को अधिकाधिक डिजाइन, चयन और औद्योगिक प्रक्रिया की भाषा में रखा जाता है, तो बच्चे को स्वतंत्र व्यक्ति के बजाय अनुकूलित परियोजना की तरह देखने का जोखिम बढ़ता है। जीन संबंधी हस्तक्षेप का रोग रोकने वाला उपयोग और वांछित गुण चुनने वाला उपयोग नैतिक रूप से एक जैसे नहीं है। दूसरे मामले में सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक असमानता और बाजार की पसंद जैविक विविधता पर दबाव डाल सकते हैं। एलन इस चर्चा को व्यापक ट्रांसह्यूमनिस्ट आकांक्षा से जोड़ते हैं, जिसमें प्राकृतिक सीमाओं को तकनीकी दोष समझा जाता है। आलोचनात्मक पाठक यहां एलन के निष्कर्षों से सहमत हुए बिना भी एक जरूरी अंतर पहचान सकता है कि पीला कम करना, विकल्प बढ़ाना और मानव प्रकृति को डिजाइन योग्य वस्तु मानना अलग अलग नैतिक दावे हैं। पुस्तक इन दावों को सार्वजनिक बहस से गुजरने योग्य मानती है। अंत में, प्राकृतिक मानव क्षेत्र और तकनीकी अस्वीकृति की सामाजिक कीमत, एलन प्रतिरोध की चर्चा में प्राकृतिक मानव क्षेत्र की संभावना उठाते हैं। इससे उनका आशय ऐसे समुदायों या सामाजिक व्यवस्थाओं से है जो जैविक मानव जीवन, प्रत्यक्ष मानवीय संबंध और गैर संवर्धित जीवन को प्राथमिकता दे। यह विचार एक व्यावहारिक तनाव भी सामने लाता है। यदि समाज के प्रमुख संस्थान उन्नत डिजिटल पहचान, AI आधारित मूल्यांकन या शरीर में लगाए जाने वाले उपकरणों को सामान्य मान लें, तो इन्हें अस्वीकार करने वाले लोग पीछे धकेले जा सकते हैं। उन्हें कम सक्षम, कम सुरक्षित या कम उत्पादक बताकर शिक्षा, रोजगार, वित्त और नागरिक भागीदारी में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुस्तक इस संभावना को अधिकारों के प्रश्न में बदलती है। क्या किसी व्यक्ति को तकनीकी संवर्धन से इनकार करने, अपने जैविक डेटा पर नियंत्रण रखने और गैर डिजिटल विकल्प चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता होगी? प्राकृतिक मानव क्षेत्र का विचार पूर्ण तकनीकी अलगाव का विस्तृत खाका नहीं देता। इसकी उपयोगिता एक सिद्धांत के रूप में है कि तकनीकी स्वीकार्यता को समान नागरिकता की शर्त नहीं बनना चाहिए। एलन के लिए व्यक्तिगत संयम पर्याप्त नहीं है। स्कूलों, कार्यस्थलों, धार्मिक संस्थाओं और नीति निर्माताओं को भी यह विचार करना होगा कि कहां स्वचालन सहयोगी है और कहां वह मानवीय संबंध, कौशल तथा निर्णय का स्थान ले रहा है। निष्कर्ष में, डार्क एओन उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो AI, जैव प्रौद्योगिकी, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस और डिजिटल शासन को केवल अलग अलग नवाचारों की तरह नहीं, बल्कि मानव स्वतंत्रता और पहचान से जुड़े संयुक्त प्रश्नों की तरह समझना चाहते हैं। यह विशेष रूप से तकनीक नीति, शिक्षा, नैतिकता, धर्म, नागरिक स्वतंत्रता और डिजिटल संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए विचारोत्तेजक हो सकती है। पाठक को इसे एक स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण वाली आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि ट्रांसह्यूमनिज्म पर निर्विवाद अकादमिक सहमति के रूप में। एलन की भाषा चेतावनीपूर्ण है और वे तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के राजनीतिक तथा आध्यात्मिक अर्थों को प्रमुखता देते हैं। यही गुण इसे अधिक तटस्थ भविष्यवादी या केवल तकनीकी नीति संबंधी पुस्तकों से अलग बनाता है, जहां कई पुस्तकें नवाचार की क्षमता, निवेश और संभावित लाभों पर केंद्रित रहती है, वहां डार्क एओन उपचार से संवर्धन, सुविधा से निर्भरता और व्यक्तिगत चयन से संस्थागत दबाव तक के संक्रमण को केंद्र में रखती है। इसका व्यावहारिक लाभ तैयार उत्तर देना नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्न विकसित करना है। कौन सी तकनीक किस उद्देश्य से अपनाई जा रही है? उसके डेटा, जोखिम और लाभ पर किसका नियंत्रण है? असहमति या अस्वीकृति का अधिकार कितना वास्तविक है? इन प्रश्नों के माध्यम से पुस्तक पाठक को तकनीकी दावों के प्रति न तो अंध विरोधी, न अंध समर्थक, बल्कि अधिक सतर्क और जवाबदेही केंद्रित दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जो एलन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।